Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama,
Rama Rama, Hare Hare,
Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna.
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों की ओर से आप सब लोगों का आज शाम के हरि कथा में स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। रश्मि जी और ओम प्रकाश जी अग्रवाल, कोमल और विनय, जिन्होंने अपने निवास स्थान पे आप सब मित्रों को, सज्जनों को और हमको ये अवसर दिया है आपको सुनने का और हमको सुनाने की सेवा दी है, इस परिवार का आभार प्रकट करते हैं। कोमल का प्रश्न है कि गीता का सार सुनेंगे, और स्वाति कहती है कि अच्छा बनना या धार्मिक बनना, इन दोनों में क्या महत्वपूर्ण है अथवा मुख्य क्या है। तो ये दो चर्चा के विषय आज के रहेंगे। भगवद गीता जीवन में पूर्ण शक्ति के साथ सफलता प्राप्त करने का साधन है। पूर्ण शक्ति के साथ जितनी हमारे अंदर योग्यता है उससे भी ज्यादा उत्साह के साथ, एंथुसियास्टिकली सफलता का लक्ष्य सामने रख के उसको प्राप्त करने का संदेश है। असल में भगवान अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध धर्म युद्ध है। गीता को वैसे शास्त्र भी धर्म शास्त्र है। ये तो धर्मामितम इदम यथोक्तम परियुपासते, ये धर्म का अमृत है। ये तो भगवद गीता के 12वें अध्याय में शास्त्र की शिक्षा को धर्म का अमृत कहा गया है। धर्म का अमृत है ये, और धर्म की स्थापना ही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य है। धर्म की स्थापना, धर्म की परिभाषा गीता में है, एक लौकिक धर्म होता है जो प्रचलित रीति रवाज होता है, रस्म होता है, उसको भी धर्म कहते हैं, जिसको नीति धर्म कहते हैं। जैसे नीति शास्त्र होता है जिसमें मर्यादाएं का उल्लेख होता है, उसको नीति धर्म कहते हैं। और वो नीति धर्म जो है वो स्वधर्म के अंतर्गत आता है। स्वधर्म का मतलब वो नीति धर्म, पुरुष का अपना एक नीति धर्म है, स्त्री का अपना एक नीति धर्म है, ब्राह्मण का एक अपना नीति धर्म है, क्षत्रिय का अपना एक नीति धर्म है। भाई युद्ध में कोई उसको ललकारे तो उसको लड़ना उसका नीति धर्म है, और उसके मुंह मोड़ना उसका नीति धर्म नहीं है। तो स्वधर्म के अंतर्गत नीति धर्म आता है, और स्वधर्म शरीर का होता है, और शरीर डॉक्टर का अलग स्वधर्म है और इंजीनियर का अलग स्वधर्म है, उनकी अपनी क्वालिफिकेशन है, उनका स्वधर्म वो कहलाएगा। लेकिन एक स्वधर्म आत्मा का है जो सबका एक है, वो असली धर्म है। एक नैतिक धर्म है जो हर एक का अलग होता है। बच्चे का अलग धर्म है, बड़े का धर्म अलग हो जाता है। ये जो धर्म है ये स्वधर्म कहलाता है। वयस्क का अलग धर्म है, वो कभी भी बिजनेस के अंदर अपनी सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा, ये उसका पहला नेम है। اس کو مارواڑی کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹے نے پوچھا کہ باپ جی اپنے کام اور سیکرٹ کی ہے, کیا ہے سیکرٹ؟ ہاں بولے بیٹا تین منزل کے اوپر چڑھ گیا. بولا اوپر سے کودو. بولا میں گر جاؤں گا. بولا میں تو کیچ کر لوں گا نا, میں نیچے کھڑا ہوں. اوپر سے بیٹا کودا, باپ بھاگ گیا. بیٹے کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی. بابا نے ایمبولنس منگائی, اسپتال میں لے گیا, پٹا کرایا, 50,000 خرچ کیا. بچہ بولتا ہے بے پاپا آپ نے کہا تھا پکڑ لیں گے, پھر آپ نے پکڑا نہیں. بولا بیٹا تمہارا پرسن کیا تھا؟ بولا آپ نے بیٹے بزنس کی سیکرٹ کیا, وہی تو آپ کو سکھانا تھا کہ بیٹے کو بھی کبھی اپنا سیکرٹ نہیں بتانا. یہ اصلی ہمارے بزنس کا سیکرٹ ہے, یہ آپ کو انوبھو کر کے بتانا تھا کہ کسی کو بھی اپنے بزنس کا, اور کبھی بھی بھیس یہ نہیں کہتے تھے کہ میں آپ سے پروفٹ نہیں لیتا ہوں, بغیر اس کے اس کا دنیا دندہ چلے گا نہیں. اس لیے کہ نیتی دھرم میں بھیس کو نرلج ہونا چاہیے. لجا کرے گا تو کمائے گا کیسے؟ براہمن سنتوشی ہونا چاہیے, ملے نہ ملے ہر حال میں سکھی رہنا چاہیے. اور کشتری کو راجا کو سنگرہی ہونا چاہیے, اگر کوش میں دھن نہیں ہوگا تو راج کیسے چلے گا؟ اس کو تو سنگرہی ہونا چاہیے, اکٹھا کرنا چاہیے. براہمن کو سنتوشی ہونا چاہیے اور ویس کو نرلج ہونا چاہیے. بابا سیدھا ہم کو 10 روپیہ کمانا ہے اس لیے ہم یہاں بیٹھے, سیدھی بات کرے گا, نہیں کرے گا تو کمائے گا نہیں. اور ناری کا لجا دھرم ہے, یہ نیتی دھرم کی مریادا, یہ نیتی, اس کو نیتی دھرم کہتے ہیں, یہ نیتی کا دھرم ہے, یہ سودھرم کے انترگت آتا ہے. لیکن ایک سودھرم آتما کا ہے, وہ جو سب کا ایک ہے, کیونکہ آتما تو الگ ہے نہیں کسی کا, آتما تو بھگوان کا. تو آتما کا جو سودھرم ہے وہ اصلی ہمارا دھرم ہے, اور وہ دھرم ہے سیوا. اور سیوا بھی پریم سے, مجبوری والی سیوا نہیں, پریم مئی سیوا سب کا سودھرم ہے. تو اچھے بننے کا ارتھ ہوتا ہے اپنے سودھرم کو ٹھیک کرنا. اب ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ٹھیک طرح سے ایمانداری سے کرو, یہ شریر کا سودھرم ہو گیا. اچھا بننے کا مطلب جو آپ کام کر رہے ہو اس کو اچھی طرح سے کرو, اس میں ایمانداری ہونی چاہیے, اس میں ٹائم کی پنکچولیٹی ہونی چاہیے, اس میں لگن ہونی چاہیے اپنے کام میں. وہ کام بھی اصل میں سیوا سمجھ کے کرنا چاہیے. تو یہ سودھرم ہو گیا اچھے بننے کا شریر کا. اور دھارمک بننے کا اصل میں ارتھ ہوتا ہے آتما کے دھرم کو پہچاننا. تو وہ ہماری کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, وہ ہمارا سوروپ ہے, وہ ہمارا سوبھاو ہے, اس سے الگ ہمارا آئیڈینٹیٹی ہے ہی نہیں. تو یہ دیکھا جاتا ہے جو دھارمک, صحیح مانا دھارمک, ایک دو شبد ہیں, ایک ریلیجیس ہے اور ایک اسپریچول ہے. انگریزی میں دو شبد ہیں, اسپریچولیٹی اور ریلیجیاسٹی. ہم ایک بار جنماشٹمی کا پرساد لے کے پریزیڈنٹ آف انڈیا اس وقت میں عبد الکلام خان صاحب تھے, تو ہم سے پوچھا جب ہم گئے تو بھائی آپ کون سے, مطلب کون سے سنستھا سے آئے ہو؟ تو ہم نے کہا ہم اسپریچول موومنٹ ہیں. اس وقت میرے مکھ سے ایسے نکلا کہ ہم اسپریچول, بولا میں اسپریچول لوگوں سے ملنا پسند کرتا ہوں لیکن ریلیجیس لوگوں سے نہیں, کیونکہ ریلیجیس لوگ آپس میں لڑتے ہیں, اور اسپریچولیٹی میں میرا فیتھ ہے, ریلیجیاسٹی میں نہیں ہے. تو ایک جو شریروں کے استھر کے اوپر مذہب یا جس کو ریلیجن کہا جاتا ہے, وہ تو دنیا میں جھگڑے کا کارن ہے, سب دیکھ لیں. لیکن جو اسپریچولیٹی, جو ریئل دھارمکتا ہے, اس میں بہت بڑی دیا ہے. وہ تو دیا دھرم کا مول ہے, یہ رامائن کا ایک چوپائی سدھ, یہ دیا دھرم کا مول ہے. دیا دھرم کا مول ہے, مول کا مطلب ہے فاؤنڈیشن, مول کا مطلب ہے فاؤنڈیشن. جو دیا ہے ہردے میں, جس دوسرے کا دکھ دیکھا نہیں جا سکتا ہے, وہ دھرم کا مول ہے. وہ دھرم کا جس کو کہا جائے کہ نیم ہے. دیا دھرم کا مول ہے پاپ مول ابھیمان, اور ابھیمان آدمی کرے گا تو سنسار میں پاپ اس سے ہوگا. تو اصل میں دھارمک بننے کا ارتھ ہے اپنے آتما کے سوروپ میں استھت ہونا. یہ सुपरफिशियल रिलीजियासिटी नहीं है। बेसिकली हम भी सिर्फ फॉर्म में लिखते हैं हमारे रिलीजन को के हिंदुइज्म, लेकिन हम भी उसको असल में जानते नहीं है कि ये क्या है। एक वे ऑफ लाइफ है बेसिकली। हिंदू जो शब्द है ये शब्द भी पर्शियन भाषा से आया है। जब पर्शियन सिंधु रिवर को क्रॉस करते थे तो स उनकी भाषा में है नहीं। हम सप्ताह कहते हैं, वो हफ्ता कहते हैं, चाह को वो ह उच्चारण करते हैं। तो वो जब जाते थे कि कहाँ गए थे, बोला सिंध गए थे, तो कहते हिंद गए थे। वहां कौन रहते हैं, तो बोला हिंदू रहते हैं। तो ये हिंदू शब्द असल में पर्शियन भाषा से हमारे साथ लागू हुआ, हमारे से ये जुड़ गया। तो हिंदू शब्द किसी भी वेद में है ही नहीं, किसी भी शास्त्र में हिंदू शब्द है ही नहीं। गीता भागवत में कहीं भी हिंदू शब्द आपको मिलेगा नहीं, तो है ही नहीं। ये तो पर्शियन ने थोड़ा समय पहले ये प्रोफेसर बाथाम ने लिखा है, दी वंडर दैट वाज इंडिया, उसका एक पुस्तक है, ब्रिटिश एक बड़ा थियोलॉजियन है, उसने लिखा है कि ये हिंदू शब्द कैसे कब भारत के ऊपर लगा। तो धर्म जो शब्द है वो धीर से निकला है। धीर का मतलब आधार, जिस आधार पे कोई चीज टिकी हो उसको धर्म कहते हैं। वो धर्म अलग नहीं किया जा सकता। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, पानी का धर्म है प्यास बुझाना और बहना। जो बहेगा और प्यास बुझाएगा उसको पानी कहेंगे, ये पानी का धर्म है। बाघ भी पानी है लेकिन प्यास नहीं बुझा सकती और बहेगी नहीं, तो ये उसने अपना धर्म बदल गया उसका। बर्फ भी पानी है लेकिन प्यास नहीं बुझाएगी और बहेगी नहीं, तो वो उसने का धर्म परिवर्तित हो गया, विकृत हो गई वो। तो धर्म पानी का है प्यास बुझाना, धर्म चीनी का है मीठा होना। सफेद कोई भी चीज मीठी नहीं है तो चीनी नहीं कहेंगे, तो चीनी का धर्म है मीठा होना। आग का धर्म है प्रकाश देना और गर्मी देना, और गर्मी और प्रकाश नहीं है तो आग का धर्म अपना नहीं है। तो आग से गर्मी अलग नहीं की जा सकती, पानी से प्यास बुझाने की पायनी शक्ति अलग नहीं की जा सकती, क्योंकि ये उसका धर्म है। धरती का धर्म है धारण करना, वो सबको धारण करती है, तो धारण करना धरती का धर्म है। तो धर्म के ये अर्थ है जो चीज हमसे अलग नहीं की जा सके। और रिलीजन का अर्थ है फेथ, जो बदलता रहता है। भाई आज एक आदमी का फेथ क्रिश्चियनिटी में, कल नहीं है तो वो उसका फेथ जो है मोहम्मदन में, तो मोहम्मदन हो गया, उसका फेथ बदल गया तो कहता मैं हिंदू हो गया। तो ये फेथ है जो चेंज होता है, लेकिन धर्म चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म चेंज होता ही नहीं है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वो उसका स्वरूप है। तो इसलिए आत्मा का धर्म क्या है, तब ये प्रश्न उठता है कि आत्मा का धर्म क्या है जो आत्मा से अलग हो नहीं सकता है। तब कहते हैं आत्मा का धर्म है सेवा करना और प्रेम करना। अब आप अच्छी तरह से दुनिया में देख लीजिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो प्रेम नहीं करता है या सेवा नहीं करता है। आप किसी भी जीव से प्रेम और सेवा अलग कर सकते हैं क्या? चिड़िया भी जाएगी तो एक दाना लाएगी, अपने बच्चे को खिलाएगी, करती है प्रेम सेवा करती है कि नहीं? गाय अपने बछड़े को दूध पिलाएगी, वो बिछड़ा घर में इंतजार करेगा मेरी माँ आएगी, प्रेम इतना है। पशु को मानव में भी प्रेम और सेवा से कोई, आप बताओ कोई किस कोई ऐसा है जिसमें प्रेम और सेवा न हो? भाई किसी से तो प्रेम करते हैं ना, अपने परिवार से करते हैं, माता पिता से करते हैं, बच्चों से करते हैं, फिर रिश्तेदारों से करते हैं, फिर देश से करते हैं, फिर मानवता से करते हैं। प्रेम का दायरा बढ़ता रहता है, लेकिन प्रेम से अलग तो कोई नहीं। कोई ऐसे नहीं कह सकता है कि मैं प्रेम नहीं करता हूं, कुछ भी नहीं तो अपने शरीर से तो सभी प्रेम करते हैं, अपने से तो प्रेम करना ही पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं प्रेम नहीं करता हूं। ये प्रेम हमारे अंदर इनबिल्ट है, ये आत्मा का धर्म और सेवा। अब बताए कोई ऐसा है दुनिया में सेवा नहीं करता हो किसी की? किसी ने किसी की सेवा की? माँ बेटे की सेवा करती है, पति पत्नी की, पति सेवा करता है बच्चों, मास्टर स्कूल में स्टूडेंट की सेवा करते हैं, कोई नहीं दुनिया में जो सेवा नहीं करता हूँ। अपने शरीर की सेवा तो करनी पड़ेगी, लोगों के पास कुछ नहीं बचा सेवा के लिए तो कुत्ता बिल्ली पकड़ के सारा दिन घुमाते रहते हैं, तो सेवा तो करनी ही पड़ती है। सेवा से मुक्त हो ही नहीं सकते। हमारे बड़े बुजुर्ग घर में भगवान को रख के एक घंटा उनकी सेवा करते थे तो वो गार्ड कॉन्शियस थे। अब भगवान को निकाल के डाग रखा है तो डाग कॉन्शियस हो गए और सेवा वही करते हैं। सुबह उसको घुमाने जाना, फिर उसको खिलाना करना, वो पुराने जमाने में भगवान की सेवा होती थी। डाग हो गए, सिर्फ स्तर ऊपर नीचे हो गया। तो पहले प्रेम से लोगों को गले मिल के कहते थे आओ बैठो, अब तुमको तो की तरह भौंकना पड़ता है। किसी ने तो मुझे कहा कि पहले रोटी घर में गाय को खिलाते थे और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाते थे, अभी पहली रोटी पति को खिलाते हैं गाय जैसा रहे। चुपचाप बिचार तो शांति पूर्वक वो तो शांति वाली रोटी हो गई। अरे राम, तो कुत्ते वाली रोटी तो कुत्ता है ही नहीं, तो हम ही खा जाते हैं। ये भी पहले मर्यादाएं कुछ बनी हुई थी, ये नीति धर्म था, ये खत्म हो गया। तो सेवा का धर्म किसी से अलग किया ही नहीं जा सकता है। कोई नहीं कहता है कि मैं सेवा नहीं करता हूं, किसी न किसी की सेवा करनी पड़ेगी। सभी सेवा कर रहे हैं। सेवा और प्रेम जीव से अलग किया है, क्यों? ये जीव का धर्म है। जीव का धर्म ही सेवा और प्रेम है। अब ये प्रश्न होता है कि हम प्रेम भी करते हैं और सेवा भी करते हैं, किससे? असल में दोनों हम क्यों करते हैं? सेवा क्यों करते हैं, प्रेम क्यों करते हैं? इससे हमको सुख मिलता है। भाई माँ बच्चे की क्यों सेवा करती है? उसको सुख मिलता है। क्यों बच्चे से प्रेम करती है? उसको सुख मिलता है। तो असल में प्रेम और सेवा इसलिए करते हैं जो उससे हमें आनंद मिलता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही आनंदमय है। आत्मा तो आनंदमय है, आत्मा है ही आनंदमय, तो उसको आनंद मिलता है प्रेम और सेवा से। अब ये प्रश्न दूसरा उठता है कि हमको सुख और चाहिए, आनंद चाहिए, लेकिन आपको सुख और आनंद कहाँ चाहिए? घर में चाहिए कि ऑफिस में चाहिए? कहाँ चाहिए? तो आपका उत्तर क्या आएगा? हमको सब जगह आनंद चाहिए, सही? और फिर कब चाहिए आनंद? दिन में चाहिए या सुबह या शाम को, इवनिंग में? सब समय चाहिए। देखो उत्तर क्या आएगा कि सुख सब जगह चाहिए, आनंद हर समय चाहिए। किसी से सुख मिले किसी से नहीं मिले ये इच्छा है, नहीं सबसे मिले। अब ऐसा कौन है जो सब जगह है, सब समय है और सब में है? ऐसा कौन है? एक भगवान है। तो इसका मतलब जब प्रेम और सेवा उस भगवान की करेंगे तभी सुख और आनंद मिलेगा। इसको सीधा सा लाजिक है भाई, हमको सदा सुख चाहिए तो सदा तो कोई चीज रहे नहीं, इसलिए हम जिससे भाई जान नौकरी करते हैं उससे बड़े प्रेम से सेवा करते हैं, लेकिन नौकरी से निकाल दे डिसीजन आया तो हम फ्रस्ट्रेट हो गए। पिताजी से बड़ा प्रेम था लेकिन समय आने के उधर शरीर छोड़ दिया तो हम दुखी हो गए। तो इस दुनिया में जिससे भी हम प्रेम और सेवा करते हैं वो सदा रहने वाले नहीं है, वो सब जगह रहने वाले नहीं है। सब जगह और सब में रहने वाले तो भगवान है। इसलिए हमारा प्रेम और सेवा तब सफल होता है जब भगवान की ओर उसको उन्मत किया जाता है, उसको भगवान की ओर जब मोड़ा जाता है तब हमारे को सुख और आनंद का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। भगवान के लिए ही एक ये श्लोक है, शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभम। कैसे भगवान है? वह शांत आकारम, आकार का मतलब उनका स्वरूप बहुत शांत है। बोला कहां शांत है लेकिन कहां? बोला भुजग शयनम, सांप के ऊपर सोए हुए हैं फिर भी शांत है। सोए हुए कहां है? बोले सांप के ऊपर सोए हुए हैं। भुजंग कहते हैं सांप को। आइए कृष्ण, क्या आपके गेस्ट का नाम?
संदीप जी मेहता।
समीर जी मेहता। अच्छा जी मेहता जी आई
सालू जी सालू
सालू
क्या
सालनी
सालनी।
अरे भैया हमने तो ऐसा किया, नाम बहुत अच्छा ओम प्रकाश है, हम ओपी करके टोपी पहना देते हैं। कितना अच्छा नाम है ओम प्रकाश शालिनी, मतलब जिसमें बहुत अच्छे गुण हो, स्वभाव जिसका अच्छा हो, ऐसे नाम होता है। लेकिन उसको साली सालू ऐसे करके बाखर में आलू बना देते हैं। नाम भी पहले बड़े प्रेम से बच्चे किसी पुत्र पिताजी का नाम है तो श्रीमान कह के आगे, फिर पूरा गोवर्धन दास जी नाम है ऐसे कहते थे, अब तो जी डी। तो नाम एक का मैं पूछा पिताजी का नाम क्या, बोला बेबी के। किसको बेटे बीके बाल कृष्ण, कितना अच्छा नाम है। अब वो बीके हो गया, न इधर का न उधर का बेकिंग हो रही है। हरे कृष्णा। सो धर्म जो आत्मा का है वो प्रेम और सेवा है, और ये दो सिर्फ इसलिए हम करते हैं कि हमको सुख और शांति मिले, आनंद मिले। ये अब मनोविज्ञान है, ये साइकोलॉजी, आप अच्छी तरह से देख लो जीवन में कि हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमको सुख और शांति मिले। लेकिन आप देख लो कि दुनिया में ये दोनों चीजें आप कर रहे हैं, आपको ये दो चीजें मिल रहा है क्या? अपने आप से पूछो, आप किसी की तो सेवा कर रहे हैं, किसी से प्रेम अभी भी कर रहे हैं ना, क्या आपको सुख और शांति मिल रही है क्या? दुनिया में जाके पूछ लो, जवाब आएगा नहीं। ये सत्य है कि झूठ है? सत्य है। कर रहे हैं फिर भी नहीं मिले, क्योंकि हम कहते हैं एक भगवान भगवत गीता में कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूं, सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबकी दिल में बैठा हूं। भगवान कहां बैठे? दिल में बैठे। और हम क्या करते हैं? दिल का लॉकेट बना के किसी का फोटो लगाते हैं, बचपन में पापा मम्मी का लगाते हैं, और विवाह के बाद पति का लगा, पत्नी का लगाते हैं, और फिर बच्चों का लगाते हैं। तो ये हमारे दिल में फोटो बदलते रहते हैं बारह, असली दिल में भगवान बैठा है, वो बदल नहीं सकता है, लेकिन हमारा आप देखें कि चेंज होता रहता है समय समय के साथ। और ये तो आज कल से मेरे को ये अच्छा एक मैसेज लगता है, बचपन में बच्चे से पूछो, लड़का और लड़की दोनों माँ मेरी है बोलते हैं, माँ मेरी है, दोनों चपकते हैं, माँ मेरी है, माँ मेरी है, और बड़े होते तरफ कहते माँ तेरी है, ले जा। बंटवारा करते हैं, दो महीने तेरे घर में, माँ तेरी है, बचपन में मेरी करके लड़ते हैं और बड़े होके तेरी करके मरते हैं। कितना बड़ा परिवर्तन हो गया, वही प्रेम की मूर्ति माँ, तो ऐसे स्थिति आगे चल के आ जाती। तो ये सब बता रहा है कि प्रेम और सेवा जब तक भगवान की ओर नहीं उन्मित की जाएगी, तब तक हमारे को असली सुख और शांति नहीं मिलेगी। सीधा सा, तब कोई कहे कि सिर्फ भगवान को ही पूजा करे तो सेवा करे, तो फिर सब दुनिया का कैसे काम चलेगा? तब भागवत से उदाहरण सनक आदिषियों का, नहीं ये नारद जी का उपदेश है कि पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे ना तो सारा पेड़ हरा भरा होगा, पत्ते भी फूल फल सब। और अगर आप अलग पानी पत्ते के ऊपर डालेंगे तो पत्ता धुल जाएगा लेकिन हरा नहीं होगा, जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ फलता फूलता है। या भोजन पेट में डालने से सारे शरीर को पुष्टि और संतुष्टि मिलती है। अगर हाथ कहे कि मैं मेहनत करके कमाता हूं, मैं ही खाऊंगा, तो हाथ के ऊपर रख दो गुलाब जामुन तो हाथ थोड़ी देर के बाद थक जाएगा, कुछ सुख नहीं मिलेगा, पेट में डालेगा तभी सुख होगा। तो जैसे भोजन पेट में डालने से सारे शरीर को संतुष्टि और पुष्टि मिलती है, जैसे जड़ में जल डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा होता है, ऐसे भगवान से प्रेम और सेवा करने से पूरी सृष्टि संतुष्ट हो जाती है, सारी सृष्टि संतुष्ट हो जाती है, सब सबको संतुष्टि मिल जाती है। और इसमें तो वो दुर्वासा का उदाहरण देते हैं, जब पांडवों के पास कामे वन में दुर्योधन ने तो कपट करके भेजा कि दुर्योधन द्रौपदी भोजन कर ले, उसके बाद जाके आप महाराज वहां भोजन करना। तो द्रौपदी के पास सूर्य का दिया एक पात्र था, अक्षय पात्र, उसमें जब तक स्वयं नहीं खाती थी कितनों को वो भी खिलाए तो खिला सकती थी। अभी भी उड़पी मंदिर में एक अक्षय पात्र है, उसकी पूजा होती है अक्षय तृतीया के दिन। आज भी उड़पी एक ऐसा मंदिर है जिसमें जितने भी यात्री आते हैं सबको भोजन मिलता है, मतलब वो भंडारा चलता ही रहता है। उनका दाल रसम और सांबर ये जो सिंपल है, ये जितने भी यात्री लाख आए 2 लाख आए कितने भी आए सबको भोजन मिलता है। वो अक्षय पात्र उनका कहते हैं ऐसे भगवान का है और उसको भोजन चलता ही रहता है। और कुछ विशेष भोजन, कुछ अतिथि विशेष आते हैं तो अलग बिठा के खिलाते हैं, जनरल भोजन चलता ही रहता है सबके कहीं किसी को। तो ये उड़पी मंदिर में भगवान गोपाल है, छोटे बाल गोपाल, ये रुक्मणी जी को बहुत इच्छा हुई कि भगवान की बाल लीलाओं, हमने तो देखी नहीं बाल लीलाएं, वो तो वृंदावन में हुई, तो रोहिणी माता से बाल लीलाओं का पूछा। फिर एक बहुत सुंदर बाल कृष्ण की मूर्ति बनाई, हाथ में मंथनी है, मंथन करने की ली हुई है। तो वो ठाकुर जी वहां से द्वारका से गोपी चंदन कोई जहाज में, जहाज कोई पानी का ले जा रहा था द्वारका से, तो जहाज में बैलेंस करने के लिए बहुत बड़ा एक चंक रख दिया, बड़ा पत्थर मिट्टी का। तो जहाज जाके उड़पी के समुद्र के किनारे से जो आगे निकला तो फंस गया। तो मधव आचार्य वहां बैठे हुए थे, वो बहुत बड़ी शक्ति चाहते भीम का उसके अंदर, वो भीम कौन सा अवतार थे, तो भीम जैसी शक्ति उनमें थी। उन्होंने जहाज को ऐसे खींच के बाहर निकलवाया, तो उन्होंने कहा महाराज आपको कुछ हम भेंट देंगे। बोला क्या है आपके पास? तो देखा गोपी चंद है, द्वारका से गोपी के चंदन आता है जो ये लगाते हैं, तो ये पत्थर गोपी चंद का। महाराज बोला पूरा उठाया, जैसे उसको खोला उसके अंदर से ये ठाकुर जी निकले जो रुक्मणी पूछती थी। फिर उन्होंने वो स्थापित किया उड़पी में, वो बाल गोपाल अभी भी ठाकुर जी उड़पी मंदिर में दर्शन होता है, वो रुक्मणी के द्वारा पूजित बाल कृष्ण की वो श्री विग्रह है ठाकुर जी। ऐसे गुरुवायुर में जहाँ ये जाते हैं वो भी द्वारका के अंदर भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में पूजे जाते थे, जो देवकी और वसुदेव के द्वारा, वो गुरुदेव और वायुदेव उसको ले आके, गुरु वायु इसलिए कहते हैं गुरुदेव गुरु और बृहस्पति गुरु बृहस्पति और वायुदेव वो लाके वहां स्थापित किया। तो ये असल में ठाकुर जी उधर के हैं। तो बात चल रही थी किसकी, ये कैसे बीच में आ गया प्रश्न, द्वारका गोपी चंद,
सबको संतुष्टि मिल जाती है,
सबको संतुष्टि मिल जाती है। एक बात ये चल रही थी कि अक्षय पात्र था द्रौपदी के पास, और इससे भी सिद्धांत, सबसे बड़ा सिद्धांत क्या मिलता है कि घर में जो बड़ी माता जी हो, जो भी स्त्री घर में बड़ी हो, वो सबको खिला के फिर खाए तो बरकत होती है। इसका अर्थ, जो सामान्य अर्थ ये होता है कि घर की मालकिन जो माता है वो अगर सबको प्रेम से खिलाए फिर खाए तो सबको संतुष्टि होती है, ये इसकी मर्यादा इसकी ये है। तो द्रौपदी सबको पहले खिलाती थी और जब स्वयं खा लेती थी उसके बाद पात्र दूसरे दिन फिर भोजन देगा, उस दिन नहीं देगा, ये नियम था। तो दुर्वासा तो आए दोपहर के बाद और भेजे भी दुर्योधन ने, बड़ा षड्यंत्र करे कि ये भोजन करा नहीं पाएंगे और ये ऋषि उनको श्राप देगा, तो ब्राह्मण के श्राप से उनका अहित हो जाएगा, वही मेरा हित होगा। दुर्वासा तो 10,000 शिष्यों के साथ आ ही गए, कहा महाराज हम भोजन करेंगे युधिष्ठिर महाराज में, स्वागत है आपका, हम जमुना स्नान करके आते। द्रौपदी आप क्या करें, मैंने तो भोजन कर लिया आज तो कुछ नहीं होगा, तो ऋषि अकेले भी नहीं है 10,000 शिष्य। तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, हे कृष्ण अब क्या करें। द्रौपदी का नाम है कृष्णा, कृष्णा उसका दूसरा नाम है और यज्ञ की तीसरा नाम है, वो यज्ञ से उत्पन्न हुई है, किसी स्त्री पुरुष की बेटी नहीं है। वो तो महाराज द्रुपद के यज्ञ के अंदर से ये बेटी उत्पन्न हुई है यज्ञ से, और ये भगवान श्री कृष्ण की वैसे तो बहुत प्रिय सखी भी थी, अद्भुत भगवान श्री कृष्ण से उसका प्रेम था। भगवान श्री कृष्ण भागते हुए आ गए और कहते हैं जरूरत भूख लगी है कुछ खाना है, बोला पहले 10,000 वान के भोजन के लिए मेरे पास कुछ है नहीं और आप भी भूखे ही आए, बोला नहीं बहुत भूख लगी है, तुम्हारा पुत्र है कहाँ, तुम्हारा पात्र अक्षय कहाँ है, कुछ तो होगा उसमें, बोला मैं खा के रखता अब तो उसमें कुछ नहीं होगा, लड़ाओ इधर। एक दाना कोने में चावल का लगा हुआ था कि इतना साग थोड़ा पड़ा था, भगवान ने उसको उठ के उठा के मुंह में डाल दिया, बोला मैं संतुष्ट होगा तृप्त हो, यश तृप्ति जगत तृप्त है, भगवान तृप्त हो गया। और कहा भीम जाओ आप जाके बुला के आओ जरा महाराज को, बोलो भोजन तैयार है। युधिष्ठिर कहते महाराज कहाँ कृष्ण भोजन है कहाँ, बोला आप बुलाने तो जाओ। कैसे जाए बना भीम तुम जाओ, तो भीम तो उठाया गदा और रवाना हो गया। युधिष्ठिर को चिंता हुआ, वो स्नान करते करते नहाते नहाते उनके पेट में ऐसा अफारा होने लगा, सबको डकार आने लगी कि अब कुछ खा नहीं सकते, भगवान ने क्या खाया उनका सबका पेट भर गया। और भीम कहता है महाराज भोजन तैयार है, अब तो 10,000 आदमी बाहर से शिष्य कहते हैं गुरुजी अब क्या करें, बोला खा तो कुछ नहीं सकते, महाराज के वहां जाएंगे अनादर हो जाएगा, भोजन नहीं किया तो ये तो अनादर हो जाए, फिर अब क्या करें, भागो अब तो यहाँ से भागना पड़ेगा। और भीम पीछे बुला रहे हैं और वो भाग रहे हैं, वापस एक भी नहीं आया, और उधर भोजन नहीं था लेकिन भगवान ने इतना क्या खाया सबकी संतुष्टि होगी। तो असल में भगवान के प्रेम और सेवा करने से सारा जगत संतुष्ट हो जाता है। एक भगवान को हम संतुष्ट करें तो सारी जगत के सबके हृदय में भगवान ही तो बैठे हैं ना। एक लड़की छोटी बच्ची थी, बचपन में गोपाल का घर में पूजा करती थी प्रेम से, बड़ी हो गई शादी हो गई अपने गोपाल को साथ ले गई, पति बहुत बड़ा अच्छे स्वभाव का था, प्रेम करने वाला ध्यान रखने वाला था, लड़की संतुष्टि, लेकिन सांस थोड़ी सी, वैसे भी सांस शब्द का अर्थ कभी कोई पूछता है ना तो कहते हैं जिसका नाम लेने से सांस बंद हो जाए उसको सांस कहते हैं, सांस सांस बंद। और बहुओं का सास की प्रति कैसा भाव होता है, भगवान करे नहीं हो, सर दुख रहा था सास का, बोला बेटी सर दबा दो, बोला जब गले में दर्द हो तब बुला लेना। लेकिन दुख से ये कहना पड़ता है कि 10 साल के बाद उसी को सास बनना पड़ता है जो 2 दिन पहले बहू थी, समझ में आ जाए कि ये हमारे से भी ऐसे होता तो कोई ऐसे नहीं करेगा। लेकिन माया इतनी प्रबल होती है थोड़े दिनों के लिए, वो ऐसा माहौल पैदा होता है तो वो साथ से बेचारी बहुत दुखी हो गई, मन में था साथ रहे प्रेम से रहे, सो पानी भरने के लिए गई तो एक साध्वी को देखा, इस बच्ची को रोती देखे साध्वी, बोलते बेटी तुम रो क्यों रही हो, बोला माँ रो क्या रही हूँ, मेरे को बहुत बड़ा प्रेम पति तो सेवक मेरी से संतुष्ट है, मैं भी उनकी सेवा करती हूँ, घर में सबके साथ प्रेम से रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास को ये थोड़ा सा परेशानी, मेरे को दुख उसके कारण हो रहा है। तो साध्वी ने कहा बेटी तुम जो गोपाल की पूजा करते हो वो गोपाल तेरी सास के दिल में भी रहता है ना, वो तो सबके दिल में रहता है, तो बोले तुम अपने गोपाल को प्रार्थना कर दो कि मेरी सास का मन बदल दो, कि मेरी सास माँ की तरह मुझे अपनी बेटी मान ले, हम घर में सुख से रहे, वो तेरे जो गोपाल है वही तो सबके हृदय में रहता, तेरी सास के हृदय में भी तो होगा ना। और उस बच्ची ने गोपाल को प्रार्थना किया, 5-7 दिन में सास का मन बदल गया, परिवार सारे का माहौल अच्छा हो गया। ये वेद की स्तुति है भागवत में, 10वें स्कंद के अंत में वेद की स्तुति में ऐसे लिखा है कि भगवान सबके हृदय में है, वैसे माया से कोई भी छूट नहीं सकता है, लेकिन भगवान कृपा करके किसी को छुड़ाए तो वो छूट सकता है। और प्रभुपाद ने यही प्रार्थना अमेरिका में उतरते ही ये प्रार्थना की कि भगवान मैं नहीं जानता हूँ आप मुझे क्यों लाए हो, ये लोग लालच और लोभ के कारण रजोगुण में लोभ होता है कि सुबह से शाम से भागा दौड़ी करते हैं धन के पीछे, और धन कमाने के 5 दिन धन कमाते हैं और 2 दिन बैठ के उसको खा के लुटा के समाप्त करते हैं, उनको इससे ज्यादा इतना ही करना आता है, 5 दिन कमाना 2 दिन खाना, पूरा खत्म करना खा के फिर दोबारा कमाना, तो इसको कहते हैं रजो और तमोगुण की संस्कृति। रजोगुण का मतलब लालच और लोभ है, सुबह से भागो शाम तक, और दो दिन वो जो कमाया वो बैठ के खा के खत्म करो, फिर नए सिर से कमाओ, ये उनका जीवन है। तमोगुण का मतलब ऐसे बैठ के सब कुछ नाश कर दो, और रजोगुण का मतलब लोभ से कमाओ। तो प्रभुपाद ने कहा ये पूरे का पूरा देश तमो और रजोगुण की प्रवृत्ति से इतना प्रभावित है। अब इनके हृदय में मैं ये जो कहूँ कि इनको कि आप सात्विक हो जाओ और कुछ नियमों का पालन करो, ये मेरी बात कैसे सुनेंगे? तब प्रभुपाद को ये वेद की स्तुति याद आई कि भगवान आपके सबके हृदय में तो हो ना, परमात्मा के रूप में मुझे भी आप लाए हो, इनकी दिल में भी आप रहते हो। अगर आप इनके ऊपर कल्याण करना चाहें, इनका उद्धार करना चाहें, तो आप इनको प्रेरणा दीजिए, ये जो मैं कहूं वो इनको समझ में आ जाए। असल में ये मैकेनिज्म है इस दुनिया में, हमने अनुभव जीवन में करके देखा है। किसी से आपका थोड़ा सा कहते हैं कि मन में हो जाए, थोड़ा सा ऐसे व्यवहार में कुछ त्रुटि हो जाए और आप में इतना हिम्मत नहीं है गट्स के उसको कहो कि आई एम सॉरी, अब भगवान को प्रार्थना करके देखो कि मैं तो भाई उसके प्रति जो मेरे से हुआ उसके लिए मैं पछतावा कर रहा हूँ, अब अच्छा है कि उसके मन से ये बात निकल जाए। दो चार दिन के बाद आप देखेंगे वो आदमी आपके साथ बात ही दूसरे तरीके से करेगा। हमने तो 100 ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखी। भगवान साहब हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, हमारी अच्छी भावना को एकदम जान लेते हैं, फिर वही भगवान दूसरे के हृदय में जो रहते हैं उसको कह देते हैं तुम्हारे प्रति इसका ये भाव नहीं है, तुम मन अपने को बदल लो। और ऐसा वातावरण आप करके देख लो तो सब माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत सिंपल है, अच्छे होने के लिए धार्मिक होना इसलिए जरूरी है कि अच्छा आदमी वही बन सकता है जो धार्मिक है, सही माना में जो आध्यात्मिक स्तर पे है उसमें ही अच्छा। ऐसे तो भागवत में लिखा है कि जो भगवान का भक्त नहीं उसमें अच्छे गुण कहाँ से आएंगे, और जो भक्त है उसमें सारे देवताओं के अच्छे गुण होते हैं। 26 अच्छे गुण लिखे हैं जो एक धार्मिक व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, 26 पूरे गुण हैं, वो दया से लेकर सत्य से लेकर किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, अहिंसा, ये 26 गुण वो उसमें होते हैं जो भगवान की सेवा और प्रेम करने का जीवन जिसका हो जाता है। तो गीता का असल में गीता पहले तो गीता में भगवान कहते हैं मेरा अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए होता है। तो धर्म जीवन में स्थापित करना है तो भी भगवान के गीता के संदेश को पढ़ना चाहिए, धर्म देश में स्थापित करना है तो भी भगवद गीता की जरूरत है, धर्म विश्व में स्थापित करना है तो भी गीता की जरूरत है, क्योंकि गीता आई ही धर्म स्थापना के लिए। वो धर्म क्या है? प्रेम और सेवा धर्म है, ये जातिवाद धर्म नहीं है। जाति असल में जाति होती है पशु जाति, पक्षी जाति, मानव जाति। जाति भेदभाव नहीं होता है मानव में, इसको जाति नहीं कहता, ये हमने इसका गलत मतलब निकाला है। पशु जाति, पक्षी जाति, मानव जाति, इसको जाति कहते हैं, बाकी ये जातियां नहीं है जो हम कहते हैं भाई ऊंच नीच, ये जातियां नहीं है, ये तो हमने बाद में इसको बनाया। इसका अर्थ है वर्ण, वर्ण का मतलब जो जिस काम को वर्ण करता है उसी से उसका नाम होता है, भाई जो डॉक्टरी के काम को वर्ण करता है उसको डॉक्टर कहते हैं, तो ये उसका वर्ण हो गया। जो वकील है उसको वकील कहते हैं, उस काम को काम से उसका वर्ण बनता है, जाति नहीं है ये। तो धार्मिकता जीवन में स्थापित करने के लिए शिक्षा भगवद गीता की अति आवश्यक है। पहले वो शिक्षा हमको ये बताती है कि हमारा जीवन परमानेंट है, वैसे दिखता है कि शरीर टेम्पररी है लेकिन आत्मा तो टेम्पररी नहीं है ना। तो पहले हमारे को गीता से ये शिक्षा और संदेश मिलता है कि हम थोड़े समय के लिए नहीं है, हम अमर हैं। ये शरीर जैसे गाड़ी है, आपने कितनी दो चार गाड़ियां जीवन में आदमी बदल ही लेता है, और कपड़े तो हजारों लाखों बदल देता है। ये गीता का तो श्लोक है कि शरीर तो कपड़े के मिसल है, और जैसे कपड़ा एक पुराना हो गया दूसरा बदल देते हैं, ऐसे शरीर कई हमारे जीवन में बदल जाते हैं। तो हम तो वही रहते हैं, कपड़े कितने भी बदले हमने लेकिन हम तो वही रहेंगे। तो ये शरीर को दूसरा तो गाड़ी बोला है, यंत्र रूहानी माया, ये शरीर तो यंत्र है, तो गाड़ी की सर्विस होती है, गाड़ी बदलती है। ऐसा ये शरीर कभी बदला है तो आत्मा तो नहीं, आत्मा तो मरता नहीं। शरीरों का जन्म होता है, शरीरों का मरण होता है, आत्मा का तो आना जाना होता है, मिलना होता है, बिछड़ना होता है। ये इतनी बड़ी प्रबल इस शिक्षा का प्रभाव था कि जब भगत सिंह जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको कहा तुम्हें फांसी, बोला फांसी शरीर को दोगे, आत्मा तो नहीं मार सकते हो ना, हम फिर आएंगे, जब तक तुमको यहाँ से खदेड़ेंगे नहीं तब तक तुम्हारे से लड़ते रहेंगे। ये इस आत्मा के अमरता का प्रभाव था कि उन लोगों के अंदर धर्म की रक्षा के लिए वीरता आ जाती कि हमारे हम अमर हैं, पहली बार। और दूसरी बात, आपको ये पता लगे कि मेरा जाप परमानेंट है, और फिर ये दूसरा पता लगे कि मेरी बैकिंग, कोई मिनिस्टर मेरे पीछे, भाई प्राइम मिनिस्टर मेरे पीछे है, उसका मेरे को बैकिंग है, तो मेरे को काम करने में तो बहुत बड़ा, दिल हमारा बड़ा हो जाएगा ना, काम कहीं भी करने में, जितनी मेरे में शक्ति है उससे ज्यादा काम भी फैला सकता हूँ। तो भगवान सीधा कहते हैं, अब आप आत्मा अमर हो, फिर मैं आपके पीछे हूँ, आप मेरे अंश हो, मैं आपका पिता हूँ। अब इतना बड़ा जिसको गौरव हो जाएगा भगवान मेरा पिता है, तो फिर उसको डरने की क्या जरूरत है। ये अगर समझ में जीवन में, और ऐसा भी पिता नहीं हूँ कि मैं घर में रहता हूँ, मैं तुम्हारी दिल में रहता हूँ, और तुम भी गरीबी जाओ तुम्हारे साथ रहता हूँ, और वहाँ पिता के बाद उधर तो कहते हैं मैं तेरा सखा हूँ। सखा का अर्थ होता है संस्कृत में सम्यक ख्याति। सम्यक ख्याति मतलब एक का नाम लेने से दूसरे का नाम याद आ जाए। अर्जुन कहोगे तो कृष्ण याद आ जाएगा, सुदामा कहोगे तो राम कहोगे लक्ष्मण याद आ जाएगा, इसको बोलते हैं सम्यक ख्याति। तो भगवान हमारे सखा है, वो हमारे हृदय में हमारे मित्र के रूप में बैठे, तो वो हमारे साथ ही है हमेशा, और कहते हैं मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आप चिंता मत करो किसी की, मेरे ऊपर छोड़ दो और अपने काम को करते रहो, और आपके काम को पूरा मैं कर लूंगा, आप चिंता मत करो। अभी असल में महाभारत युद्ध किसने जीता, अर्जुन का एक विवाह मणिपुर की राजकुमारी से हुआ था। दिग्विजय को जब दिग्विजय कर रहे थे राजसूय यज्ञ के लिए, तो मणिपुर से एक मणिपुरी उल्पी उसका नाम था, उसके अर्जुन का विवाह हुआ था। उसका बेटा था बब्रुक वाहन, वो बब्रुक वाहन अर्जुन का बेटा महाभारत युद्ध से पहले पांडवों के सामने कृष्ण को कहता है कि ये सब सेना क्यों इकट्ठी कर रहे हैं। बोला बहुत भारी युद्ध होने वाला है, कौरवों ने अन्याय किया है, राज नहीं देते हैं पांडवों को, 5 गांव भी नहीं देते हैं, और हमने संधि का प्रयास भी किया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, इसलिए अब युद्ध होगा। बोला फिर आप इतनी सेना क्यों इकट्ठे करते हो, मैं अकेला ही सबको मार लूंगा। तो ऐसे ही भगवान ने परीक्षा लेने के लिए कहा, ठीक है तुम बांध चलाओ, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उन सब पत्तों के अंदर सोराख होना चाहिए। तो उसके बाण ऐसा चलाया कि सब पत्तों के अंदर सोराख हुआ, एक पत्ता भगवान ने अपने पांव के नीचे दबा के रखा और बाण उधर घूम रहा है। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दिया। अब तो अर्जुन कहता है ये अन्याय कर दिया कृष्ण, ये आपने क्या कर दिया, ये सारा अकेला युद्ध कर सकता था, सबको मार भी सकता था, आपने इसका गर्दन क्यों काटा। बोला अर्जुन तुमने क्या कितने वचन दिए हुए हैं, भीम ने कहा है कि उसका उसको तो ये जांग काटेगा, उनका खून पिएगा, उसका गर्दन काटेगा, तो इतने सारे लोगों ने जितने वचन किए हैं, कितने वरदान देवताओं के, ये सब कानून अपने हाथ में ले रहा था, ही वॉज डूइंग समथिंग, तो सबका, इसलिए इसका रहना ठीक नहीं था। तब उसने कहा कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ, बब्रू वाहन के कटे हुए सर ने कहा ठीक है तुम्हारा सर हम ऊपर रख देते हैं पहाड़ी के ऊपर, नेजे में तुम पूरे इस युद्ध को देखते रहना। युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन ने कहा मैंने उसको मारा, कुछ ने कहा। तब भगवान ने कहा जाके बब्रू वाहन से पूछो कि किसने किसको मारा। जब बब्रू वाहन से पूछा तो बोला एक सुदर्शन चक्र सबका गर्दन काट रहा था, बाकी तो सब ऐसे ही बाण फैला रहे थे, असल में सबको मारा काटा वो तो सुदर्शन चक्र ने। उस बब्रुक वाहन को खाटू श्याम जी के नाम से अभी राजस्थान में उसकी पूजा होती है, वो अर्जुन का बेटा है, और भगवान ने सर काटा था तो वो अमर जैसा हो गया, तो भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में अभी उसको वहां पूछते हैं। तो ये तो सब ऐसे ही बाण चला रहे थे। भीष्म पिता मैंने कहा है प्रार्थना में भागवत में कि आपने नजर डाली उनके ऊपर जिन्होंने द्रौपदी के अपमान का सहयोग किया था, तो आपने उनकी आयु छीन ली, वो मर ही चुके थे। एक हंसी मजाक में कहते हैं कि आर्मी में भर्ती करने के लिए एक डरपोक आदमी को कहा कि तुमको आर्मी में पकड़ के, एक युद्ध होता है तो जबरदस्ती किसी को पकड़ के आते हैं, वो बेचारा डर रहा था ऐसे, उसको आए कि टेस्ट कर रहे हैं, बोला वो देखो सामने पढ़ो क्या है, बोला सामने कहाँ, बोला दीवार में, बोला दीवार कहाँ है, उसको देखो कहाँ लाए हो, लेकिन बोला नहीं अभी तो हमें आर्मी में डालना ही है आदमी को। तो दूसरे दिन सुबह बोलता है कि मेरे को रात स्वप्न में मैं आर्मी में लड़ने के लिए क्या, मैंने देखा एक दुश्मन को, एक मैंने तलवार निकाली, एक बाजू काट दिया, फिर दूसरे बाजू को काट दिया, एक टांग काट दी, तो हमने पूछा भाई तुमने गर्दन के ऊपर तलवार क्यों नहीं चलाई, बोला वो तो पहले ही कटा हुआ था। तो एक तो मरा हुआ था उसको काट रहा था और वो भी स्वप्न में काट रहा था। तो ये महाभारत में बाकी तो सारे स्वप्न में मरे हुए को काट रहे थे। असल में भगवान अपने शब्दों में कहते हैं भगवद गीता में, निमित्त मात्र भव सव्यसाचन, तुम केवल निमित्त मात्र बनो, मैंने ये काम तो पहले ही कर दिया। तो असल में जो भगवान के भक्ति से काम शुरू करते हैं, काम पहले ही भगवान करते करते हो तुम, कन्हैया नाम मेरा हो रहा है, ये भगवान का नेम है। नाम भक्ति प्रसन्नता नाम वो तो देता है अपने भक्तों को, स्वयं सारथी के रूप में रहता है। सारथी की परिभाषा क्या है, आग लगती है कौन जलाता है, अग्निदेव जलाता है, लेकिन बगैर वायु के अग्निदेव जला सकता है क्या, अगर हवा नहीं हो तो अग्नि नहीं जला सकती ना, लेकिन हवा को कोई नहीं कहता कि उसने जलाया, सब कहते हैं अग्नि ने जलाया। नाम अग्नि का होता है लेकिन काम वायु कराता है, तो वायु देव अग्नि का सारथी है, ऐसे भगवान सारथी है सबके, अर्जुन के सारथी है, नाम अर्जुन का हुआ, काम भगवान ने किया, हमारे सवाए हम सबके भी सारथी वो भगवान श्री कृष्ण आज भी बनने को तैयार है। इसलिए सारे गीता का सार कभी हमको दो मिनट में बोलना होता है तो हम कहते हैं ये शरीर रथ है, हमारा शरीर रथ है, इसकी इंद्रियां घोड़े हैं, मन इसका लगाम है, स्टीयरिंग है, और बुद्धि इसका ड्राइवर है, आत्मा इस शरीर रूपी रथ में यात्री है। आत्मा यात्री है, बुद्धि ड्राइवर है, सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। अब पूरी भगवत गीता में, सारी भगवत गीता में सार ये निकलता है, भगवान कहते हैं तेरा मन मुझे दे दो, बुद्धि में मुझे बिठा दो। ये गीता के चार पांच श्लोकों में सार ये है, मैं अर्पित मनो बुद्धि, तेरा मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो, मयैव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय, मयैव मन आधस्त्व, तेरा मन रूपी लगाम मेरे, मेरी डोरी तेरे हाथ, डोरी का मतलब लगाम, भगवान मेरा ये मन रूपी डोरी तेरे हाथ में है, और निवास का होता है अर्थ घर में, बुद्धि को भगवान का घर बना लो, बुद्धि में भगवान को बिठा दो। भीष्म पितामह की प्रार्थना में वो कहता है भगवान मैं बुद्धि आपको अर्पण करता हूँ, आप इसमें आके बराजी, इस मेरी मति को आप ग्रहण कीजिए, मेरी बुद्धि को आप ग्रहण कीजिए, मति मेरी बुद्धि में आपको दे रहा हूँ। तो भगवद गीता का सारांश ये है कि जीव मन हमारे शरीर रूपी रथ का हम सारथी भगवान को बना दें, बुद्धि में उसको बिठा दें और मन रूपी लगाम उसके हाथ में दे दें, तो हमारी इंद्रियों के घोड़ों को वो अच्छे मार्ग पे सद्मार्ग के ऊपर चलाएगा, तब हमारा भव सागर से पार होना संभव हो जाएगा। तो ये बहुत सरल सा साधन है, कैसे करें उसका बहुत सरल कलयुग के अंदर बहुत उत्तम और सरल ये कार्य शुरू जबान से होता है। जबान के दो काम है, एक चखना और एक बोलना। बोलने के लिए थोड़ा सा भगवान के नाम का उच्चारण करने का अभ्यास करना चाहिए और चखने के लिए भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। घर में जो बने वो भोग भगवान को लगे, प्रसाद परिवार खाए, और थोड़ी देर जब प्रसाद परोसे उसके पहले भगवान के नाम का कीर्तन हर घर में हो तो भगवान सबके सारथी बन के उनका संचालन करने को तैयार है। दो ही काम हमको करना है और ये दो काम हम सब रोज करते हैं, भोजन भी रोज खाना है, दो तीन बार खाना है, और बोलना भी हमको रोज सुबह शाम है। तो भोजन जो करें वो बहुत अच्छी शुद्ध सात्विक भगवान को अर्पण करके भोग और प्रसाद के रूप में खाएं, और प्रसाद खाने से पहले या खाने के बाद परिवार वाले थोड़ी देर बैठ के महामंत्र जो वेदों का सार करके ब्रह्मा जी ने नारद के माध्यम से कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसका कीर्तन कर लें। तो कोई खर्च लगता है इसमें, लेकिन देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आ जाएगा, सद्गुण अपने आप आने लगेंगे। और एक नहीं, हजारों के अंदर हमने ये परिवर्तन देखा है, एक्सपेरिमेंटेड, ये फैक्ट है। यहाँ तक के एक ने तो PhD की है कि इस हरे कृष्ण मंत्र जापने से उसने 20 आदमी को कोको कोला जपाया, 20 मिनट वो 20 आदमी को हरे कृष्ण मंत्र जपाया। और फिर कितना तनाव मुक्त होता है, कितना स्ट्रेस कम होता है, उसका एक 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 पैरामीटर बनाया। और फिर PhD उसके ऊपर की कि बाय चैंटिंग होली नेम देयर इज डिक्लाइन इन स्ट्रेस, व्हाइल चैंटिंग एनी अदर नेम देयर इज नो इफेक्ट। वो तो थीसिस उसकी साइंटिफिक थीसिस है अपनी जगह पे। तो ये दो काम करने से हमारे जीवन में परिवर्तन, पॉजिटिव सुख और शांति का दिखाई देगा, जो हमारे जीवन का असल में लक्ष्य है, सुख और शांति। सब काम करते सिर्फ इसी के लिए, और वो हाथ नहीं आता है। और वो अच्छाइयां सब तब आएंगी जीवन में जब हम आध्यात्मिक बनेंगे। भौतिकता हमेशा झगड़े में रहती है, भौतिकता में झगड़ा ही रहता है। आध्यात्मिक का बड़ी शांत प्रवृत्ति का स्तर है, क्योंकि आत्मा आनंदमय है और आनंद में खलल पड़ता ही नहीं, आनंद कभी कम ही नहीं होता। इसलिए जीवन में ऐसा घर घर के अंदर वातावरण बनाना चाहिए, तब कलयुग में हम कितना बड़ी परेशानी में बाहर जूझना पड़ता है सुबह से शाम तक, कोई प्रदेश में है दूसरा, तो ये थोड़ा सा घर में इम्यूनाइजेशन, जैसे कोई घर में पहले टीके लगा के जाए तो बाहर की बीमारी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये प्रतिदिन अपने आप को आध्यात्मिक मानो के स्नान जल से करके जाते हैं, जैसे शरीर को स्वच्छ करने के लिए, ऐसे मन और आत्मा को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम के अमृत का पान करके रोज गाए तो आदमी बहुत कंटेंट रहेगा और कंपोज रहेगा, उसका सारा बिहेवियर जो है एटीट्यूड, इसके ऊपर ही बहुत रिसर्च की है कि एटीट्यूड में बहुत बड़ा फर्क है, टॉलरेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, बहुत बड़ा टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। तो ये जीवन में बहुत जरूरी चीजें हैं, जिसमें क्रोध का नहीं आना, टॉलरेंस का बढ़ना, ये भी जीवन में बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो ये सब आ जाती है थोड़ा सा जीवन में, ये आध्यात्मिक का भरना चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है? और एक